हरे कृष्णा। तो इस दानगढ़ के शिखर पर आप सबका स्वागत है। श्री बरसाना धाम की आज की यात्रा है 19 फरवरी की। आइए सब लोग बैठिए। बरसाना श्रीमती राधा रानी का घर है जो कमल के बीच में है। उस कमल की 8 पंखुड़ियां हैं जहां पर 8 सखियों के गांव हैं। और हम अभी बरसाने में बैठे हैं जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत बनकर विराजमान हैं। कुछ लोगों ने कहानी सुनी है, कुछ लोगों ने नहीं सुनी है, दोबारा सुनाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। अनंत बार सुनना चाहिए, इसलिए जिन्होंने सुना है उनका रिविजन हो जाएगा। देखो आपको कितना कितना याद आता है। कितने लोगों ने ब्रह्मा जी का तपस्या कहानी नहीं सुनी है? हाँ, बहुत लोगों ने नहीं सुनी। हरे कृष्ण। सत्ययुग के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था 60,000 साल, इस भावना से कि जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण भगवान आएंगे तो उनके सखाओं की, सखियों की और उनकी कृष्ण बलराम राधा रानी के चरणों की धूल जो है वो में प्राप्त हो जाए। सत्ययुग की शुरुआत में ही 60,000 साल तपस्या किया, बहुत कड़ी तपस्या की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, कोई दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद में सत्ययुग के अंत में फिर 60,000 साल तपस्या किया। और वो तपस्या बहुत, देवता लोग करते हैं ना, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, सूखे पत्ते खाकर उपवास करते हुए, व्रत रखते हुए, दिन रात। 60,000 साल कोई छोटे समय नहीं होता है, हमारा जीवन ही 60 साल का है। 60,000 साल तपस्या करते हैं, 120,000 साल होते हैं टोटल। तो सत्ययुग के अंत में फिर उनको भगवान कृष्ण जो है दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम आपके चरणों की धूल चाहते हैं, आपके सखाओं की और आपके चरणों की धूल चाहते हैं और आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे लीलाओं का दर्शन जो है वो सबको दुर्लभ है, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही वो मुमकिन है, उनका दर्शन हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी की भावना देखकर वो उनको तथास्तु कहते हैं। वो कहते हैं आप ब्रज में चले जाओ, ब्रिजभानुपुरम गत्वा, आप ब्रिजभानुपुर में जाइए और वहां पर पर्वत बनिए। सबसे बड़े जीव हैं ब्रह्मा जी, है ना, सबसे प्रथम जीव है वो, सबके ग्रैंडफादर है, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, परम 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 पितामह है। हमारे गुरु जी बताते हैं कि अगर किसी के घर में समझो अगर वो ग्रेट ग्रैंडफादर है तो बड़ा गर्व करता है, देखो मेरे 5 पुत्र हैं, मेरे 5 पुत्रों के 25 और पुत्र हैं, और ये 25 पुत्रों की 25 बहुएं हैं, और इतनी कन्याएं हैं, और ये यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, इनकी यहाँ प्रॉपर्टी है, इनकी वहाँ प्रॉपर्टी है, और इन सबका मैं परदादा हूँ। इतना गर्व से बताते हैं ना, जितना आदमी बुढ़ा होता है उतना उसको और उसका ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, नाती पंती सब पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी को कितना गर्व होना चाहिए, सोच सकते हैं आप। ब्रह्मा जी जो है सबसे प्रथम जीव है, जितने भी योनियां हैं इस दुनिया में, अब पंछी है, सांप है, राक्षस है, दानव है, दैत्य है, देवता है, मछली है, पेड़ है, कीटक है, जो भी आप बताओ, सब योनियां ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से निर्माण किया है। तीसरे स्कंद में भागवत में इसका वर्णन आता है कि कैसे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रजापतियों के माध्यम से, अलग अलग ऋषियों के माध्यम से बहुत विस्तार पूर्वक निर्माण किया उन्होंने। बहुत डिटेल्ड है ये, इतना साधारण चीज नहीं है, बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत ही विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है। इतने अध्याय उसमें खर्च किए गए हैं ये समझाने में कि जीव सृष्टि, फिर अचर सृष्टि, मतलब जीवित सृष्टि, हम जैसे जीव जो है घूमते हैं, जीवित जीवंत है, फिर जो स्थावर प्रॉपर्टी है, कि पर्वत है, खेत है, जमीन है, समुद्र है, फिर उसके बाद में समय का निर्माण कैसे किया उन्होंने, कितने श्लोक है, मेरे ख्याल से 50 श्लोक है उसके अंदर, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म समय से लेकर महान से महान समय तक, ब्रह्मा जी के जीवन काल तक और विष्णु के एक श्वास के काल तक तक वर्णन आया है। 3 trillion 11 billion ईयर्स ये विष्णु जी का एक श्वास का टाइम है। खाली एक सांस लेते हैं बस अंदर, उतने टाइम जब सांस छोड़ते हैं तो अगेन 3 trillion 11 billion and 20 million ईयर्स तो सांस लेते हैं तो महाप्रलय होता है, सांस छोड़ते हैं फिर सृष्टि होती है, सृष्टि होती है विकास होता है उसका, और जब सांस खत्म होती है तो उसका विनाश हो जाता है। उसमें महाप्रलय है, मिनी प्रलय है, हाँ हर कल्प के अंत में है, हर युग के अंत में है, हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के समय का प्रभाव इसका वर्णन आता है। ये सब ब्रह्मा जी ने भगवान के नेतृत्व में निर्माण किया है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है समझो, तो वो लोहा लेता है, यहाँ से कुछ लेता है और कुछ जॉइन करके कुछ बनाता है, एलॉय मिश्र धातु बनाता है, तो उसके चक्के बनते हैं, कुछ कुछ बनता है उसका, और वो बनाने के बाद इंजीनियर कितना गर्व करता है, देखो इसको मैंने बनाया है। हालांकि उसने धातु सब यहाँ वहाँ से लिए हैं, मालिक से लिए हैं, अरे उसको मैनिपुलेट किया है, फिर भी कितना गर्व करता है, देखो ये सब मैंने बनाया है, ये हमारे नेतृत्व में बनाया है। ब्रह्मा जी 24 तत्वों को लेकर विष्णु से 24 तत्व लेते हैं, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियां, ऐसे 24 विषय हैं, महत्त्व है, मन बुद्धि अहंकार है, ऐसे अलग अलग प्रकार के विषय हैं, त्रिगुण है, सब लेकर पूरी सृष्टि बनाती है। कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है ये। और उसके बाद में कर्मों के हिसाब से यमराज से लेते हैं, चित्रगुप्त से लेते हैं, वो हिसाब से हर एक का शरीर डिजाइन करते हैं, तो हर एक का शरीर अलग अलग होता है। अनंत प्रकार के जितने जीव हैं उनके अनंत प्रकार के एक एक योनि में भी सब लोग अलग अलग हैं, और उनका पूरा जीवन का काल जो भी डिजाइन करते हैं कि उनको किस समय पर ये कैसे दिखेंगे, बाद में कैसे दिखेंगे, बूढ़े में कैसे दिखेंगे, व्यंग कैसे होगा, अच्छा कैसे होगा, सुंदरता कितनी होगी, कुरूपता कितनी होगी, रोग कितना होगा, सब कुछ मेटिकुलस प्लानिंग करते हैं और सब पर नजर भी रखते हैं, सबका रिकॉर्ड भी रखते हैं। उनका पूरा बड़ा एंटरप्राइज है पूरा, उनका पार्षदगण उनके बहुत महीन काम करते हैं। तो कितना गर्व होना चाहिए ब्रह्मा को, सोचिए आप क्या पोजीशन है उनकी, टॉप मोस्ट पोजीशन है एकदम। उनकी माँ भी नहीं है, सीधा भगवान के नाभि से जन्म हो गया उनका, स्वयं भू, स्वयं भगवान अपने मुख से उनके हृदय में पूरा ज्ञान प्रकट करते हैं, जो भी जानना चाहिए वो सब प्रकट कर देते हैं। कोई कॉलेज स्टडी 12 साल 15 साल 20 साल PhD ग्रेजुएशन कोई जरूरत नहीं है, एक क्षण के अंदर मंत्र बोल के पूरा ज्ञान उनके हृदय में दे देते हैं। कितने प्रिविलेज सोल है वो, हाँ सोचो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है MBBS MD PhD करने के लिए, अरे बहुत धक्का खाना पड़ता है। हाँ कुछ लोग अभी PG के लिए कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे क्या किया जाए, कैसे किया जाए उसको। ब्रह्मा जी को इंस्टेंट नॉलेज मिलता है, पूरा 18 विद्याओं का परिपूर्ण ज्ञान मिलता है, भक्ति के ज्ञान के साथ मिलता है, और फिर वो सेवा करते हैं। इतने श्रेष्ठ जीव हैं, निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, सृष्टि के निर्माण में, पलालन पालन में, हर चीज का जिम्मेदारी उनके ऊपर, फिर भी उनका सेवा भाव जो है वो कम नहीं होता कभी। और अभी क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है वो पत्थर बनना चाहता है। पत्थर बनने का मतलब जानते हो, निश्चेष्ट हो जाना, मतलब कोई इंद्रिया नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई कुत्ता आएगा, सोर आएगा, टट्टी पेशाब करेगा, जाएगा, थूकेगा, कोई कुछ भी करेगा, चलेगा गंदे पांव लेकर, एनीथिंग कैन हैपन ना, वर्षा होगी, धूप होगी, सांप आएगा, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है पत्थर पे, पत्थर कुछ नहीं कर सकता है, पत्थर इज जस्ट स्टैंडिंग, दैट्स ऑल, कोई चेतना भी नहीं है, कोई बात करने का भी चांस नहीं है, कोई इंद्रिय भी नहीं है। इतना पत्थर बनना मतलब एकदम जैसे अहिल्या को रामचंद्र जी ने पत्थर के सांप दिया था, पत्थर बन जाओ मतलब एकदम नाचीज बन जाओ, कोई है नहीं, नाचीज बनना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो सबसे निचला जो अवस्था है उसको भी ब्रह्मा जी को प्राप्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई संकोच नहीं, क्योंकि जितना आदमी नीचा बनेगा उतना अधिक कृपा प्राप्त करेगा। सबसे नीचे जाएगा तो क्या होगा, सब आपके ऊपर चलेंगे, भक्त लोग भी चलेंगे, भगवान के जो पार्षद हैं, दिव्य पार्षद, गोपी सखा, स्वयं भगवान, राधा रानी, गोपियां, सब चलेंगे, सबकी रज मिलती रहेगी, सबकी लीलाओं का दर्शन होती रहेगा। इस भावना से वो यहाँ पत्थर बने, हम लोग सब उनके सर पे बैठे हैं। वो हमारे प्रथम आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य हैं, वो गुरु हैं हमारे, वो परम 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 गुरु हैं। उनसे ही हमारे गुरु संप्रदायों को सबको ज्ञान प्राप्त होता है और हम उनके सर पे बैठे हैं। रोज यहां से नीचे से आते वक्त पहले प्रणाम करना चाहिए कि हम जा रहे हैं आपके ऊपर केवल एक ही इच्छा से, इंद्रिय भोग करने के लिए जा रहे हैं, श्री जी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो कृपा होती है। ब्रह्मा जी का मंदिर है उसमें, आपने देखा है ना, बहुत लोगों ने मिस किया उसको, लेकिन जैसे आप सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी में आते हैं तो उधर कामधेनु का दर्शन है, फिर ब्रह्मा जी का छोटा सा मंदिर है। ब्रह्मा जी के छोटे से मंदिर के नीचे एक जगह है, शिला है, उस शिला में राधा रानी के चरण चिन्ह है, छोटे छोटे से बहुत सुंदर किशोरी राधा रानी के चरण चिन्ह है। कल मैं जब आपको बताया था कहानी ऊंचे गांव में कि नारायण भट्ट गोस्वामी ने उनको स्वप्न आया था, राधा रानी ने उनको स्वप्न में बताया कि मैं इस पत्थर में हूँ, मुझे आप यहाँ से निकाल के स्थापन करो, तो उसी जगह से राधा रानी का आविर्भाव हुआ था दोबारा। जो मूर्ति लुप्त हो गई थी पहाड़ के अंदर, उसको खुदाई करके फिर राधा रानी के विग्रह को प्रकट करके फिर मंदिर में स्थापन किया गया था नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा। तो वही वो चरण चिन्ह है। गोस्वामी लोग बताते हैं कि वो चरण चिन्ह जितने साइज के हैं उतने ही राधा रानी के चरण चिन्ह हैं मूर्ति में, किशोरी है छोटी सी। इस तरह से ये ब्रह्माचल है, ब्रह्मगिरी कह सकते हैं, ब्रह्माचल कह सकते हैं, अचल यानी पर्वत, गिरी यानी पर्वत, चार मुख है इनके। भानुगढ़ में राधा रानी के पिताजी का घर है, भानु महल, भानुगढ़ कहते हैं उनके नाम से। ये दानगढ़ है, यहाँ पर ये मंदिर है और दान लीला भी जहाँ हुई है, दान बिहारी का मंदिर भी है। आप यहाँ देखेंगे सामने तो मानगढ़ है, कुछ लोगों को दिखाई पड़ेगा बाद में देखना, बहुत उत्कट जगह है वो। और इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ पर तो विलासगढ़ है। तो दान में, दानगढ़ में दान लीला करते हैं, मानगढ़ में राधा रानी मान करती है कृष्ण का प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रणय रति आसक्ति बढ़ाने के लिए। विलासगढ़ में झूला झूलते हैं, बहुत आनंद की लीलाएं करते हैं। ऐसे ये चार गढ़ हैं जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। और वैसे भी पर्वत पर बैठकर बहुत सुंदर भजन होता है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो भजन के लिए अनुकूल हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जो भजन के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे जहाँ जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती डालते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, वो भजन के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ भजन होता ही नहीं है। या तो परम संत हो तो वो कर सकता है, लेकिन आम आदमी को भजन के लिए अनुकूल जगह नहीं। जहाँ शहर है वहाँ बहुत धन कमाते हैं, पैसा वगैरह, इंद्रिय भोग की व्यवस्था है, सब जगह पर रजोगुण फैला हुआ है, वो भी भजन के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए शहरों में भजन अक्सर नहीं होता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तपस्या के बाद में शहर में रह के भजन हो सकता है। और अनुकूल जगह कौन सी है, भगवान का धाम बहुत अनुकूल है। यहाँ बसाने में आप आएंगे तो आपको अनुभव मिलेगा कि एकदम हृदय से भजन होता है यहाँ पर ऑटोमेटिक। 16 माला के बाद भी लगता है कि और भी माला करना चाहिए। बॉम्बे में ऐसा लगता है अरे अभी 11 हो गया, अभी 5 बाकी है, अभी कैसे करेंगे 5 माला, बहुत कसीन, भूख लग रही है, नींद आ रही है, चौथी माला हो गई, एक माला बाकी है, अभी मैं एक माला कल करूँ क्या, ऐसा लगता है। मतलब अंदर से कोई उत्साह नहीं आता है बम्बई में, लेकिन यहाँ पर आते ही हम लोग वही हैं, लेकिन हमारा एकदम अच्छे तरीके से होता है, भावना भी अच्छी बनती है, क्योंकि धाम का ना सहारा मिलता है आत्मा को, जो आत्मा के लिए बहुत पोषक है, बहुत पोषण मिलता है आत्मा को धाम की तरफ से। एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं, कोई देश विदेश से आए हैं, कोई अमेरिका से, इंडिया से, कोई इंग्लैंड से, कहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग व्यवसाय करने वाले, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, बहुत सारे लोग आए हैं, हमको पता लगना मुमकिन नहीं है कि इस जगह पर आने के बाद में किस प्रकार से हमारे आत्मा को पोषण मिल रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि हमारी जो आत्मा है, जो भगवान के अंश हैं, भगवान का बालक है, उसको बहुत प्रेम और भक्ति का पोषण हो रहा है यहाँ पर, केवल रहने से भी हो रहा है। हाँ, तो जब करेंगे तो कितना होगा, ऑलरेडी इतना अनुकूल वातावरण है यहाँ पर, इतना बढ़िया पोषण आत्मा का हो रहा है। राधा रानी के धाम में आप बैठे हो, सोएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर जगे रहेंगे तो क्या होगा? जगह रह के जप करेंगे तो क्या होगा? जगह रह के जप करेंगे एकदम पुकार पुकार के रो रोगे तो कितना लाभ होगा? आप सोचते जाइए आगे 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 आगे। हर समय अगर ये ध्यान से जप करेंगे कि अरे पता नहीं जीवन होगा कि नहीं होगा, अगली बार मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, अगली बार माला करने के लिए जीवित रहूंगा कि मर जाऊंगा, पता नहीं है, अभी कर लूं मैं एकदम जितना होना है उतना कर लूं भावना से, तो कितना लाभ होगा? और एकादशी का दिन होगा तो कितना लाभ होगा? और एकादशी के दिन आप रात में जगेंगे और बाद पर भजन करेंगे तो कितना लाभ होगा? अगर यहाँ पर व्रत रखेंगे तो कितना लाभ होगा? और यहाँ पर ब्रजवासियों की सच्चे हृदय से प्रामाणिक हृदय से चीटिंग ना करते हुए सरल हृदय से सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे तो कितना लाभ होगा? ऐसे अनंत चीजें मैं बोल सकता हूँ। आई कैन गो ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस। कितनी पावर है इस जगह में जो हम ले सकते हैं, लेकिन कैसा है ना, उतना ही ले सकते हैं जितना हमारा पात्र होगा। इतना सा पात्र लेके आएंगे तो हमारे पास जो 500 लीटर चाय है और आपके पास 100 ml का कप है तो हम कितना दे सकते हैं आपको? 100 ml ही देंगे ना, बाकी सब फैल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आकर पात्र बनाना चाहिए। पात्र बनाने का मतलब क्या है? आत्मा का जो खिड़कियां है ना वो खोल देना चाहिए। कोई संकोच नहीं होना चाहिए जब करने में, पुकारने में, कोई सेवा करने में, प्रामाणिकता में, नम्रता में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सब तरफ से दिल के दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि के सब तरफ से राधा रानी की कृपा प्रवेश करे, है ना। तो ये पर्वत वैसे भी पर्वत होने से ही भजन के लिए अनुकूल है, और ये तो राधा रानी का ब्रह्माचल पर्वत है। वो स्वयं विहार करती है, लीला करती है, क्रीड़ा करती है, आनंद लेती है, रहती है, उनके चरण चिन्ह यहाँ पर गिरे हुए हैं। मतलब ऑगमेंटेशन बोलते हैं ना उसको, एक्सेंचुएशन। एक अपनी चीज पावरफुल है उसके अंदर और डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल पावर दिया गया है, 10 बार 50 बार हजारों बार अलग अलग तरह से पावर दिया गया, तो कितनी शक्ति पैदा होगी उसके अंदर से। वैसा धाम है। फिर अन्य जगह जो है जब के लिए अनुकूल है वो नदी किनारा है, कुंड का किनारा है, सागर किनारा है, उपवन बगीचा है, जंगल है, ये सब अनुकूल जगह बताइए। इसलिए हमने सोचा कि आज आपको पर्वत पर आके जप करने को बुलाएंगे। पता नहीं कितने लक्ष्य गुना आपको लाभ हुआ रहेगा, जितने जितने ले जितना एनर्जी आपने डाला होगा उसका यहाँ पर केवल मल्टीप्लिकेशन है। कैन इमेजिन हाउ मेनी टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड। तो भाव से करेंगे तो पता नहीं कितना मल्टीप्लाई होगा। मैकेनिकल करेंगे तो भी लाभ होगा, हृदय से करेंगे, ये जीवन की सबसे अंतिम प्राप्ति है ये भावना से करेंगे तो कितना लाभ है। यहाँ पर आप आना भी सबसे भाग्य की बात है। कोई साधारण जीव यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गर्व करें कि हम असाधारण हैं, असामान्य जीव हैं, ऐसा नहीं है। हम बड़े तुच्छ और पतित हैं, लेकिन हम पर वो असाधारण असामान्य कृपा हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। फिर सूरज को भी वहां से यहाँ पर लाइट देना पड़ता है, उनको भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। तो हम क्या सूरज से बड़े हैं क्या? ब्रह्मा जी यहाँ पत्थर बने हुए हैं तो हम क्या ब्रह्मा जी से बड़े हैं क्या? सब देवता लोग लालायित हैं यहाँ पर आने के लिए, उनको प्रवेश नहीं मिलता है, महाप्रसाद नहीं मिलता है, दर्शन नहीं प्राप्त होता है, बहुत कठिनाई है। एक बार ब्रह्मा जी आए थे, बोले ब्रह्म भगवान का जो है वो जूठा में पाऊ कुछ महाप्रसाद ही, तो वो जमुना में मछली बन गए। वो जानते थे कि जमुना जी में हाथ धोते ना भगवान, तो कुछ हाथ में लगे हुए जो महाप्रसाद उनका है बचा हुआ वो जमुना जी में गिर जाएगा तो मैं उसको खा लूंगा तो मुझे महाप्रसाद मिल जाएगा। ठाकुर जी भोजन पाया जमुना किनारे और गए हाथ धोने के लिए जमुना जी में, देखा अरे मछली बने हुए, तो पानी लिया और जाके जमीन पे हाथ धो लिया। इसका मतलब ऐसा नहीं ये मत समझो कि ब्रह्मा जी बहुत ऐसे तुच्छ जीव हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है वो हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब हम लोग कितना धन्यवाद करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। हम तुच्छ होने पर भी हम पर इतनी अकारण कृपा हो रही है, इसके लिए कृतज्ञता जो है यहाँ का प्रधान भाव होना चाहिए। जो प्राप्त हो रहा है वो बिना किसी योग्यता के प्राप्त हो रहा है। वी शुड नो एवरी मोमेंट, ये भी जहाँ पर प्राप्त हो रहा है ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, ना हमने कोई तपस्या किया है, ना कोई मेहनत किया है, ना कोई टिकट निकाला है, ना कोई जो भी किया होगा हमने, वो हमारी योग्यता नहीं है कि टिकट निकाल के आए और रूम बुक करके हम लोग रहे यहाँ पर। तो इसलिए पूरे समय जो कोई सेवा करने आए हो, सेवा मिल रही है, कृतज्ञता बनाए रखो। तो यात्रा में आए हैं केवल यात्रा करने के लिए, यहाँ यात्रा करने का मौका मिल रहा है, कृतज्ञता बनाए रखो। कृतज्ञता ऐसा एक पात्र है जो अनलिमिटेड होता है। कृतज्ञता एक अनगिनत अमर्याद पात्र है जिसमें आपने आप अनंत कृपा समेट सकते। कृतज्ञता नहीं है, गर्व है, अहंकार है, तो पात्र जो है छोटा छोटा होते जाता है, नष्ट भी हो सकता है। अहंकार में वो भयंकर शक्ति होती है, वो सारी कृपा को नष्ट कर सकता है, जला सकता है, पूरा नष्ट कर देगा उसे। इसलिए कृतज्ञता को बनाए रखिए। जो सेवा मिल रही है वही हमारी ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। तो सेवा सबसे प्रधान कार्य है। सेवा अगर है तो यात्रा भी त्याग करना चाहिए, दर्शन भी त्याग करना चाहिए। अरे सेवा करने वालों को वो दर्शन का जो महात्म्य है, वो दर्शन वाली जो देवी है, वो अपना स्थान छोड़कर सेवा के करने वाले के पास पहुंच जाती है दर्शन देने के लिए, क्योंकि तो उनको बड़ी रुचि है। अरे कितना त्याग करते हैं, वो पांडुरंग मिट्टल आए थे ना पुंडरीक के पास, क्यों नहीं गए उनके पास, लेकिन वो खुद आए। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, कि भगवान का दर्शन करने का प्रयास मत करो, ऐसा सेवा ऐसा कार्य करो कि भगवान स्वयं आपका दर्शन करने के लिए आए। उसमें कौन सा आसान है बताओ? जो प्राइम मिनिस्टर को आपको मिलना है तो वो आसान है, कि आपको प्राइम मिनिस्टर को मिलना है वो आसान है, बताओ कौन सा आसान है? अगर आप जिंदगी भर कोशिश करोगे तो प्राइम मिनिस्टर को मिल नहीं सकते। कोशिश करते रहो, लाइन लगाते रहो, लेकिन नंबर नहीं लगेगा आपका। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मन में आया कि मुझे मुरारी वल्लभ प्रभु को मिलना है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? नो टाइम एट ऑल, तुरंत काम हो जाएगा वो। तो हमको क्या करना चाहिए? दर्शन करने को मिलता है तो जरूर आना चाहिए, सब स्वर में सोना नहीं चाहिए। लेकिन सेवा प्राप्त है और दर्शन चूक रहा है, छोड़ दो उसको। सेवा में ऐसे लगो कि सेवा से प्रसन्न होने वाले जो भगवान है वो स्वयं आपके द्वार पे दौड़े आएंगे आपका दर्शन करने के लिए। ये हकीकत है, मैं केवल ऐसे आपको प्रीचिंग करने के लिए बातें कर रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट। इसलिए सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो सेवा के माध्यम से हम भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए हमारे कई लोग अभी वहाँ पर अभी भी सेवा कर रहे हैं, कई लोगों ने बहुत दिन सेवा किया वो कहीं गए नहीं, अभी भी कुछ लोग वहाँ पर हैं। तो पूरी यात्रा किचन के लोग कहाँ पर हैं? आपको रोज हलवा आप खिचड़ी खिला रहे हैं, बढ़िया से चावल दाल सब्जी भेज रहे हैं, जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ वहाँ भेज रहे हैं, वो कहाँ यात्रा में आ रहे हैं? वो आपसे ज़्यादा भगवान की भक्ति का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो आप जो दर्शन कर रहे हैं, कथा सुनने का जो आनंद ले रहे हैं, उसको सहायता करने के लिए वो पीछे रह रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा ज़्यादा उन पर होगी तो सब छोड़कर अपनी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि वैष्णवों की सेवा जब करते हैं तो भगवान को उनकी सेवा करने से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हम जप करते हैं। हम जप क्यों करते हैं? जप करने का एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ भाव यह है कि हमें सेवा में लगाओ भगवान, प्लीज एंगेज अस राधा और कृष्णा, आपकी सेवा में हमें लगाओ। और जब वो सेवा देते हैं तो हम दर्शन को भागते हैं तो क्या कहेंगे? अरे सेवा मांगते हो, सेवा देता हूँ, तो आप यहाँ वहाँ भाग रहे हो। हरे कृष्णा मंत्र जब बोलते हैं उसका भाव एक ही होना चाहिए, प्लीज एंगेज अस इन योर सर्विस कॉन्स्टेंटली ऑलवेज फॉर ऑल द टाइम, सब समय के लिए आप हमें अपनी सेवा में लगाते रहो, अपने भक्तों की सेवा लगाते रहो, भक्तों के संग में रखो। जो भी करना है भक्तों के संग में होना चाहिए, कि भक्तों के अलग जाके हम लोग क्या करेंगे? भक्तों के संग में है तो वैकुंठ है, गौलोक वृंदावन है, सब प्रकट है। भक्तों का संग नहीं है तो केवल माया है हमारे साथ, पता नहीं मन को कहाँ भटकाएगी। हाँ तो इतने परम संत नहीं है कि एकांत भजन करेंगे। एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात ये भी कल्पते, एकांत भजन करने के तो उत्पात होता है भक्ति के अंदर। ये सब शास्त्र के वचन है, हम लोगों ने अपने मंदिर में नहीं बनाए। तो ये बरसाना धाम है, यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि आपने हमें यहाँ लाया, किसी न किसी बहाने लाया, सेवा के बहाने लाया, किचन के बहाने लाया, कोई स्टूडेंट बनकर आए हैं, कोई विदेश से यात्रा करने आए हैं, कोई देश से यात्रा करने आए हैं, कोई छोटा काम कर रहे हैं सो कॉल्ड, कोई बहुत मैनेजमेंट कर रहे हैं। सबका भाव अगर सेवा भाव और कृतज्ञता का होगा तो हर सेवा सफल है यहाँ की। और कोई मैनेजर है इसलिए गर्व करता है और कोई अगर अलग सोचता है तो वो दुर्भाग्य है एक्चुअली। कोई पद की वैल्यू नहीं है, सेवा के भाव की वैल्यू है यहाँ पर। यहाँ पर उस भाव की कीमत है, जो सेवा जिस भाव से करता है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, उस पर कृपा ज़्यादा होती है। इसलिए एक दूसरे के साथ व्यवहार, गुरु महाराज कहते हैं कि जो यात्री हैं जो सेवाहित हैं, जो सेवा करते रहते हैं, वो ब्रजवासियों इतने ही महत्वपूर्ण हैं। जिनको ये सेवा प्राप्त हुई है, जो यहाँ धाम में आए हैं, वो सब ब्रजवासियों इतने वंदनीय हैं। मतलब आप सब जो है एक दूसरे के लिए उतने ही वंदनीय हैं जितने हम सबके लिए ब्रजवासी वंदनीय हैं। तो सबका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, सहयोग करते हुए ये सेवा करनी चाहिए। तो राधा रानी जब 3 साल की हुई कुछ महीने और, तो रावल से उनको यहाँ लाया गया। यहाँ पर कोई बहुत अद्भुत स्थान है, अनंत लीलाएं वहाँ पर हुई, क्षण क्षण की लीला है। यहाँ पर कितना बता सकते, थोड़ा बहुत बता सकते हैं जितना हमने पढ़ा है, सुना है गुरु महाराज से। तो भानु महल में उनका घर है जहाँ राधा रानी रहती है। बड़े लाड़ और प्यार से उनको विश्वभानु महाराज और कीर्ति मैया उनको बढ़ाती हैं उम्र से, मतलब लालन पालन करती हैं। और बचपन का निवास तो बहुत आकर्षक होता है, कोई भी व्यक्ति अगर काला कलूटा भी बालक होगा लेकिन बालक अवस्था में बहुत अट्रैक्टिव होता है। उसके तोतले तोते बोल, उसका चलना, उसका गिरना, उसकी लीलाएं बहुत मोहक होती है। यहाँ पर साक्षात भगवान, साक्षात राधा रानी जो है, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है, अल्लादिनी शक्ति, प्रिय भगवान की जो भक्त हैं राधा रानी, स्वयं भगवान कृष्ण बलराम यहाँ पर बालक बनकर खेलते हैं। सबसे भाग्यवान लीला है ये। भगवान का इतना सौंदर्य है कि वैसे भी वो 16 वर्ष की उम्र में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वो बाल अवस्था में आकर लीला करते हैं, मैंने हमने कल भी कहा था कि जो सब वेदों को जानते हैं, सब वेद ही उनके द्वारा निर्मित है, सब वेद से उनको ही जानना है, सब वेद उनके ही चरणों से निकले हुए हैं, सबके ज्ञाता है वो, लेकिन अपनी माता से तोतले तोतले बोलना सीखते हैं। सब चराचर सृष्टि को चलाते हैं, खुद माता का हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं, क्योंकि वो सबको, भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। सबसे जो बढ़िया आनंद है ना, वो बालक बनकर जो देते हैं वो सबसे ज्यादा आनंद है। यशोदा मैया और नंद महाराज और विश्वभानु महाराज और कीर्ति मैया, इनको बहुत ज्यादा आनंद हुआ है, क्योंकि साक्षात परब्रह्म जो है, परब्रह्म की जो शक्ति है, वो उनका बालक बनकर उनके आंगन में डोल रहे हैं। उनके नन्हे नन्हे चरण चिन्ह जो है उनके आंगन में, आंगन को सुशोभित करते हैं, तो लीला करते हैं। इतनी आनंद की बात है यहाँ से, इसलिए यहाँ का जैसा आनंद कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। राक्षसों को मारने का एक आनंद है, सब लोग जय जयकार करते हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि होती है, लेकिन जब माखन चुराते हैं और छत में लीला करते हैं, भेष बदलते हैं, झूठ बोलते हैं और बहाने बनाते हैं, मट्टी खा के फिर झगड़ा करते हैं, उसका आनंद कुछ और ही है। सब गोपियां जो है वो बहाना बना बना के जाते हैं नंद भवन में कंप्लेन करने के लिए, और कंप्लेन करने वाली व्यक्ति यशोदा मैया यहाँ रहती है और उनका मुख वहाँ रहता है। तो कंप्लेन का तो बहाना है, दर्शन करने को आना है दर्शन करना है उनका बार बार, रह सकते नहीं उनके वहां, इसलिए माखन चोरी का बहाना बना के जाते रहते हैं। अपने घरों में माखन ऐसा जानबूझ के बनाते हैं कि आज हमारे घर में आके चोरी करें। बहुत चटपटी लीला यहाँ पर होती है, इसलिए यहाँ पर कोई राक्षस का प्रवेश नहीं है। जैसे कि जो उपनंद बाबा की पत्नी है प्रभावती, उसके घर में जाके बार बार चोरी करते हैं भगवान। तो प्रभावती आके बार बार कंप्लेन करती है, तुम्हारा छोरा जो है चोर है, क्यों तुम घर में खिलाते नहीं है उसको। अभी वो जेठानी है ना, वो उपनंद मतलब नंद बाबा के बड़े भाई, उनकी पत्नी है यशोदा मैया, तो थोड़ा सा आदर से बात करती है उनसे। बोले क्यों आपके घर में आता है, मैं तो यहाँ पर पद्मगंधा गायों को अच्छी तरह पालती पोसती हूँ, अच्छा कमल के खुशबू वाला घास खिलाती हूँ, जिनके दूध को कमल की खुशबू आती है, जिनके मक्खन को और गाढ़ी खुशबू आती है कमल की, ऐसा मक्खन बना के खिलाती हूँ, क्यों तुम्हारे घर में आएगा वो, भरपेट खिला के भेजती हूँ यहाँ पर मैं। तो भरपेट खिलाने के बाद भी जाके चोरी करते हैं तो वो क्या ऐसे बहाने बाता होती रहती है। तो प्रभावती जी को यशोदा कहती है एक बार कम से कम रंगे हाथ पकड़ लाओ ना, मतलब मैं कैसे विश्वास करूँ, हर बार तुम ऐसे बोलती हो, लेकिन वो तो मेरे घर पे बैठा रहता है, जब तुम कंप्लेंट करने आती हो तो मेरे घर में सोया रहता है वो, और आप बोल रहे अभी अभी मेरे घर पे चोरी करके गया है, तो वो 1 घंटे से सोया है मेरे घर पे, अभी कभी 1 घंटे पहले आया, माखन खाया, लोरी सुन के सो गया अभी वो। फिर वो ऐसे आते हैं, मैया क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, अच्छा वो प्रभावती देवी, अरे ये तो अभी मेरे घर पे था, सब अच्छी लाल लाल आंखें सो के उठा हुआ है इसलिए कहते हैं एक बार आप उनको जरा एक बार पकड़ के ले आओ, फिर हम लोग कुछ समझे कि आप क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो एक बार प्रभावती देवी बहुत इंतजाम करती है ऐसे तरह से कि इसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो होता यह है कि वो थोड़ा सा नीचा ही लगाती है, बोला इस बार थोड़ा सा ऊंचा ही लगाएंगे, तो तुम रंगे हाथ पकड़ना है तो आसान करना पड़ेगा ना काम, तो नीचे ही लगाते मटके सब। तो साहब हमारे आते हैं फ्रेंड्स को लेके और हाथ डाल के फर्स्ट क्लास खा रहे हैं, इससे सबको दे रहे हैं, इधर से बंदर को दे रहे हैं, इधर से फ्रेंड को दे रहे हैं, तो दोनों हाथ से खा रहे हैं सब, मुंह को मक्खन लगाए, हाथ पे मक्खन लगाए, तो पीछे से ऐसा हाथ पकड़ लेते हैं, बोले मक्खन में लगे हाथ नहीं लगाऊंगे, ऊपर पकड़ोगे, मक्खन चाहिए ना, दिखाना चाहिए ना, हाथ में मक्खन है, मुंह में मक्खन है। तो मैंने मक्खन नहीं चुराया है, बोले मैं तुम्हारे घर पे आया, देखा कितनी चींटी चल रही है जमीन पर, मैंने ऊपर देखा, अरे फिर यहाँ पर भी चींटी होगी, देखा तो उसमें भी चींटी थी। तो मैंने फिर हाथ डाल के चींटी को निकालने का प्रयास किया, निकाला तो निकलने थी और गहरी गहरी गई, मैं गहरा हाथ डाला फिर चींटी को निकाला तो मेरे मुंह से चींटियां चलने लगी। तो मैंने ऐसा करके चींटी को निकालने का कोशिश किया तो कुछ बड़ा मक्खन जो है मुंह पे लग गया। अभी चींटियां अगर जो किसी के हाथ में मक्खन लगा हुआ, खाना लगा हुआ है और मुंह पे चींटियां घूम रही तो कैसे करेंगे आप, कैसा अस्वस्थ हो जाएगा एकदम। तो ऐसे में अस्वस्थ हो गया, मुझे गुदगुदी होने लगी, तो मैंने उसी हाथ से वो चींटियों को हटाने का प्रयास किया तो कुछ मक्खन मेरे होठों पे लग गया। अभी होठों पे लग गया तो मैंने थोड़ा चाट लिया उसको, उसको थोड़ी खाना बोलते हैं, चोरी करना बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे हेल्प करने के प्रयास कर रहा था। इतना कीमती माखन है तुम्हारा, इतने संभाल के बनाया है, तो संभाल के रखा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपका सेवा भी हो जाए, आप तो नहीं थे वहां पर और चींटियां सब घुस रही थी उसके अंदर, तो मैंने माखन नहीं खाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा सब, ये नाटक रोज का मैं सुनना नहीं हूँ, अभी मैं तुमको पकड़ के ले जाऊंगी तुम्हारी माता के पास, और मैंने कितनी डांट सुनी है तुम्हारी माता से कि तुम बहाने बनाती हो, ऐसे मेरे बालक पे लांछन लाती हो और कंप्लेंट करती हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी आज। पर देखो ताई जी, क्योंकि ताई है ना वो, उनकी ताऊ जी की पत्नी है, ताई जी मत करो ऐसा, आप मैं आपको विनती करता हूँ, प्लीज मुझे आप छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको मैंने नहीं खाया मक्खन, लेकिन जो हुआ है हकीकत आपको मैंने बताया यार, आप अभी ऐसा मत करो, आप ये बहुत दुख हो रहा है कि आप मुझे माता के पास ले जाओगे, कैसे होगा फिर, नहीं नहीं। तो वो तो ऐसा पूरा खुश है आज कि मैंने आज हरंगे हाथ पकड़ा, अभी मैं इतना इतना प्रूफ बड़ा और कैसे ला सकती हूँ, इतना साल के बाद मिला इतना प्रूफ तो कौन छोड़ेगा उसको, कुछ नहीं आज मैं कुछ सुनूंगा नहीं। तो जा रहे हैं, बात ये सब बातें रास्ते में हो रही है सब, और वो नंदगांव की ओर जा रहे हैं जोरदार अपने नंद भवन की ओर। तो कहते देखो बड़ा कष्ट होगा तुमको बाद में, देखो पछताओगे तुम, मैं बता रहा हूँ छोड़ दो मुझे, अभी भी छोड़ने का मौका है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब सही है, लेकिन आप मेरी बात मानो। नहीं नहीं, तो एक काम करो, अभी तुम इतने मुझे सब जनता में लेके जा रही हो, सब मेरे मित्र दिख रहे हैं, हाँ कुछ मित्र हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे पता है, क्योंकि जब भी मैं मक्खन चोरी करता हूँ कहीं खाता हूँ तो वो पकड़े जाते हैं, मतलब उनको नहीं बता रहे हैं, मन में देख सोच रहे हैं कि ये क्यों हंस रहे पता है उनको, क्योंकि बहुत बार ये मक्खन खा के भाग जाते हैं और जो बाकी ग्वाल बाल उनको पकड़ा जाता है और उनको डंडे पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, सब कुछ होता है। बोले तुम चोरी करते हो, हमको खाने के पहले मौका आने के पहले डंडे ही पड़ते हैं और खा के तुम चले जाते हो, तो वो खुश है बहुत आज, तालियां पीट रहे हैं, कुछ ग्वाल बाल रो रहे हैं, अरे बेचारे कि हमको भी साथ में खिलाता था वो बेचारा, आज वो पकड़ा गया, हम लोग छुम छुट्टे हैं, वो पकड़ा गया है तो उनको दुख हो रहा है। और सारी सखियां एक लाइन में खड़े होकर सब हंस रहे हैं जोरदार, तालियां पीट रही, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, हमारे घर में भी ऐसे ही करता है, इसको पकड़ो आज दंड देना ही चाहिए। यशोदा मैया हमको भी बोरी कई बार बोल चुकी है, नहीं हम उनको अभी देखे ही जाएंगे किसी भी हालत में। तो उनको बोले भाई शर्म आ रही है, रज्जा आ रही है, थोड़ा कुछ करो, मतलब सब लोग हंस रहे देख रहे, थोड़ा मेरा तो पूरा ख्याल करो, आप तो अभी दंड देने वाले हो ना, कम से कम मुझे ढक तो दो अपनी चुनरी से। पर कोई बात नहीं, तो कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, तो अपनी चुनरी को ठाकुर जी के सर पे ओढ़ देती है। हाँ तभी आप देख सकते ना, पूरा चुनरी ओढ़ के ऐसे पूरा कवर्ड है पूरा, कोई दिखता नहीं कौन अंदर है। चुनरी ओढ़ने के पहले अपने एक दोस्त को इशारा करते हैं, आ जाओ हमारे पीछे पीछे, और वो चाचा चलने लगता है। सीन कैसा है, प्रभावती देवी चल रही है जोरदार, हाथ पकड़ के एक काना का हाथ टाइट पकड़ कर रखा है, चुनरी ओढ़ के रखा है, सब बैंड बजा पीछे चल रहा है, हंसते हुए ये बढ़िया काम हो रहा है, तो बहुत भीड़ जम रही है पीछे से, और बड़ी गर्व से प्रभावती देवी चल रही है, और वो सखा जो है उसको साथ में चल मेरे। फिर बोलता है प्रभावती देवी कितना कस के हाथ पकड़ा है मेरा तुमने, इतना कस के पकड़ा है हाथ, दर्द हो रहा है, मेरे कोमल कोमल अंग है, मैं तो थोड़ी बड़ा हो गया हूँ, मैं तो बालक हूँ, मेरा हाथ बहुत कोमल है, इतना कस के बड़ा हाथ पकड़ा है मेरा, दर्द हो रहा है हाथ में, यहाँ झुंझुनी हो रही है, तो तकलीफ होगी मुझे, तो जरा हाथ तो बदल दो कम से कम। तो ठीक है, ये भी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन वो इतना खुशी से आगे बढ़ रहे, वो हाथ देखते नहीं, सब पीछे से हाथ बदली करती है, वो तुरंत अपने सखा का हाथ देते हैं और भाग जाते हैं। समझे ना आप कैसे, ये हाथ जो उनके हाथ में है, जब वो छोड़ने के लिए दूसरा हाथ देने के लिए सखा का हाथ दे देते हैं, और पीछे से पूरा ऐसे छुप के घुस के निकल जाते हैं, और वो सखा कौन है मालूम है, वो प्रभावती का लड़का है। पूरा चुंदरी वंदरी ओढ़ के जा रहा है, ये बहुत बड़ा जुलूस जो है वो बैंड बाजा के साथ पहुंच जाता है नंदगांव, अरे यशोदा सुनो, वो खिड़की से आके क्या हुआ, ये क्या जुलूस लेके आ रहे मेरे घर में, वो किस कौन सी सखी को लेके आ रहे हो चुंदरी उड़ा के, बोला ये देखो अभी दिखा पता चलेगा कौन सखी को लेके आ रही हूँ, अंदर तो आने दो, क्योंकि आज उनको टिट फॉर टैट करना है ना, इतनी बार सुनाया तुमने, अभी देखो तुम्हारे लाला को पकड़ के लाए, तो आती है लो आज तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई है, तुम्हारे लाडले को जो बहुत सद्गुण संपन्न है, लो, और चुंदरी ओढ़ती है निकालती है, तो अरे मेरा बालक कहाँ से आ गया इधर, यशोदा ऐसे खड़ी है, क्योंकि भाग के कृष्ण भगवान घर में पहुंचे, मैया बड़ी भूख लग रही है बहुत देर से, खाला खिलाओ, तो माखन खिलाती है मैया, संदेश खिलाती है बहुत प्रेम से, बोला नींद आ रही है मैया थोड़ा सुला दो, तो सो जाते हैं, और उतने में वो पहुंच जाती है, तो वो कहते हैं अच्छा आज तुम अपने पुत्र को लेकर आए हो, कल अपने पति को चुंदरी उड़ा के लेके आओगे, हाँ और मेरे बालक का लांछन लगाओगे, तो उस दिन में आते हैं शान कान्हा जी, क्या हो रहा है मैया, और उसको देख के ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था आपको कि अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुमने माना नहीं उसको, फिर जब वो बहुत शर्माती है, बहुत शर्मिंदा होती है, वो चली जाती है, तो बाहर जाके उसके मिलते हैं, ताई जी मैंने कहा था आपको, आप मेरा मान लेते तो आपका इतना आज कचरा नहीं होता मेरे मैया के सामने। दूसरी बार ऐसे कई अनंत लीलाएं हैं, दूसरी बार ऐसे हुआ था कि प्रभावती देवी उनको पकड़ के लेके आई, तो वो अंदर से ही उन्होंने अपना रूप बदल लिया और उनका पुत्र बन गए, अनंत प्रकार की लीला करते हैं, ये सबके गीत यहाँ पर लोग गाते हैं, हाँ सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर होती हैं, ऐसे प्रेम की भूमि है ये, हाँ। तो एक बार हम जाएंगे वहां बताएंगे आपको कहानी, वहां के लिए रिजर्व रखेंगे उसको। तो यहाँ पर भानुगढ़ में शाम एक विशेष लीला यहाँ पर होती रहती है हमेशा रेगुलरली, यह है कि कृष्ण भगवान जो है वो राधा रानी के बिना रह सकते नहीं है, उनको वहाँ पर विरह इतना होता है कि वो उनके मिलने बिना रह सकते नहीं है, और यहाँ पर प्रवेश नहीं है उनको, तो उनको श्यामा सखी बनकर आना पड़ता है, हमेशा वो अनंत रूप में बदल कर आते हैं यहाँ पर, तो उसकी लिस्ट है बड़ी, वो क्या क्या बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी जोगी बनकर आते हैं, वो जोगी बनने की लीला बहुत सुंदर है, हाँ वसंत पंचमी के दिन वो जोगी बनकर आए थे, तो सब लोग एकदम खुश हो गए उसको देख के, इतना सुंदर योगी, कितने आंखें कमल के समान है और चलता भी कन्हैया जैसा है, हाँ इतना सुंदर योगी है, पूछते हैं आपने इतना सुंदर रूप कहाँ से प्राप्त किया, बोला मैंने बहुत योग तपस्या किया इसलिए मेरा सुंदर रूप प्राप्त हो गया। सब लोग वो बोलते हैं कि आपके क्या क्या खूबी आपके अंदर योगी, आप बने हुए क्या क्या खूबी, बोले मैं चेहरा देख के बताता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। अच्छा अरे बहुत बड़ा योगी है ये, सब जाने मन में कहा है सब जाने। तो बोले सब लोग कहते हैं कि हमें आपको जरा अलग लेके जाएंगे और अलग बिठाएंगे और तब बता देना हमारे मन में क्या है। तो वो अलग एकांत में लेके जाते हैं उसको सब सखियाँ, और सब एकदम जैसे ही वो सोचते हैं कि हमारे मन में क्या है, वो भी एकदम क्या कहते हैं उसको भावना से विभोर हो जाती है कि उसके बारे में सोचते ही मन में प्रेम उमड़ आता है। तो कृष्ण भगवान जो है जोगी बने हुए देख रहे हैं उनके चेहरे को, कितना प्रेम उमड़ आ रहा है, अपने प्रियतम का ध्यान कर रहे हैं, बोले बताओ बताओ हमारे मन में क्या है। तो वो योगी ऐसा ध्यान करने पड़ते हैं, फिर हंसते हैं, बोले मैं जान लिया तुम्हारे मन में कौन है। बोला अच्छा जान लिया, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन, तो एक काम करो, अगर तुम्हें जान लिया है कि हमारे मन में कौन है, तो उसको अभी कभी यहां प्रकट करो। कोई बात नहीं, तो हमारे लिए आसान बात है, हम तो ऐसा योगिक खेल बहुत जगह करते हैं, हमारा बहुत सिद्धियां हैं, हम उसको अभी खड़ा कर दे आपके सामने। सब आंख बंद करो, आंख बंद करते हैं अपना पूरा भेष उतार देते हैं, अभी आंख खोलो देखो हमारे मन में क्या था, वो सामने है कि नहीं। ये जोगी लीला जो है वसंत पंचमी में हुई थी यहाँ पर। तो कभी वो चूड़ी बेचने को आते हैं, कभी पुजारी बनकर आते हैं। ये क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारा देवियों की पूजा करते हैं, कई कई सूर्य कुंड में जाके सूर्य की पूजा करते हैं, नंदी बंदी देवी की पूजा करते हैं, कात्यायनी की देवी पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार के देवियों की पूजा करते हैं यहाँ पर। और उनको माता और शादी के बाद ससुराल वाले जटिला कुटिला सब भेजते रहते हैं। तो सूर्य कुंड में जब एक बार वो सूर्य की पूजा करने गई थी, बहुत अच्छा पर्व था उस समय, तो सब पुजारी सब एंगेज हो गए थे। अभी कैसे आज 19 तारीख है ना, सब जगह शादी है, सब बस एंगेज है, आज कोई बस अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको बस चाहिए तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन बस नहीं मिल रहा है। उस तरह से उस दिन सब जितने भी ब्राह्मण पुरोहित थे वो सब जगह पूजा में एंगेज हो गए थे। तो राधा रानी को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए कोई पंडा नहीं मिल रहा था। तो जटिला कुटला जो उनको सासू और ननंद है, वो सोच रहे क्या करें। तो मधुमंगल को बुलाते हैं, मधुमंगल तुम ब्राह्मण हो, जाओ कोई अच्छा पंडा लेके आओ। तो एक पंडा है, लेकिन वो बहुत कर्रा पंडा है, मतलब उसके बहुत सारे नखरे हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, और वो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। बोले आज की तारीख में तो पंडा चाहिए ही, कैसा भी हो, कुछ भी चाहिए, क्या दान चाहिए, बड़ा दान दूंगी उसको मैं, माला माल कर दूंगी, अलंकार से रत्नों से भर दूंगी उसको, आप ले आओ उसको। तो वो ऐसा है ना, वो ब्रह्मचारी है, वो किसी कन्या को छूता नहीं है, और किसी के घर का खाता भी नहीं है वो, और किसी का दान भी लेता नहीं है। अरे अजीब पंडा ये। दान भी लेता नहीं है तो पुरोहित की करता कैसे। वो बहुत निस्वार्थ है, मतलब वो इतना विरक्त बाबा है ब्रह्मचारी कि वो सब ऐसे ही करता है। बोले कोई बात नहीं, लेके आओ उसको। वो राधा कुंड पर है अभी, वो बहुत बिजी है। बोले कब आएगा, वो 2 घंटे बाद में आ सकता है। कोई बात नहीं, जब भी आएगा तब ले आओ, दिन ढलने के पहले ले आओ सूर्य पूजा करने के लिए। तो मधुमंगल ले आता है ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी बहुत नहीं, मैं सभी लड़की लोगों का काम नहीं करता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। फिर भी उसको मनाते हैं बहुत, जटिला कुटला पहले ही उसको एक रत्न निकाल के देती है, फिर और कुछ अलंकार देती है उसको, खाली मनाने के लिए सब एक एक करके जेब में डालता है। तो पहले बोलता है कि नहीं नहीं मैं छूऊंगा नहीं, ये मधुमंगल को देना, इससे बाद में ले लूंगा मैं, इसको मैं शुद्ध करूंगा पहले ही मंत्रों से और जल से, फिर लूंगा। फिर वो सूर्य भगवान की पूजा करता है, फिर पूजा में बहुत विधि होते हैं। बोलते कन्या को दूर बिठाओ, कन्या को पास मत बिठाओ, और ये जिसकी पूजा करनी है उसको ही रखो यहाँ, बाकी सब चले जाओ। ये पूजा में व्यवधान नहीं चाहिए, ये मेरा मधुमंगल सखा है, क्योंकि मैं लड़कियों से बात बात नहीं करता हूँ, तो ये रहेगा यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए, और जिसको पूजा करवानी है उसको बिठाओ यहाँ पर। तो सब अभी क्या है, पंडा इतना दुर्लभ हो रहा है, इतना मुश्किल से मिल रहा है, तो कोई बात नहीं ठीक है। तो चले जाते हैं, फिर पूजा होती है, फिर मधुमंगल कहता है, मधुमंगल अभी मुझे जो मंत्र बोलने हैं ना वो एकदम प्राइवेट मंत्र है, मैं अभी वो आपके सामने भी नहीं बोल सकता हूँ। अभी सूर्य की पूजा का दिन पवित्र है, मैं मेरे यजमान को पूरा लाभ देना चाहता हूँ पूजा का। मधुमंगल भगा देते। फिर उनके प्राइवेट मंत्र चलते रहते हैं बहुत देर तक, कोई डिस्टर्ब नहीं करते उनको, बहुत समय तक वो दूर से पुकारते, अभी आऊं क्या, नहीं मंत्र पूरे नहीं हुए अभी, तुम रुको बाहर। फिर अभी आ जाओ, क्योंकि अभी जटला कुटला का शोर वहां मचता है, क्या हो रहा है, कितनी देर से पूजा हो रही है, क्या चल रहा है अंदर। तो फिर वो भी आते हैं, फिर वो बोलते हैं अभी मंत्र हो गया, अभी सब हो गया। तो जटला कुटला जो है सासू और ननंद, जो बड़े बड़े गहने और बहुत अलंकार उसको भेंट में देते हैं, तो कहते हैं कि ये मुझे मत दो, ये अपने मधुमंगल का दो, और मैं आपको बोले पुरोहित को हम लोग भोजन भी कराते हैं। नहीं नहीं, ये तो केवल फल मूल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, ये किसी का घर का खाते नहीं है, और माताओं का तो खाते ही नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जटला कुटला के हाथ का मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो मैं उन्होंने मेरे आश्रम में मैंने उनके लिए फल मूल का व्यवस्था किया है, वो वहीं पर खाएंगे। वो चले जाते हैं, वही हमारे कन्हैया जी हैं, हाँ ब्रह्मचारी बने हैं। तो इस तरह से ज्योतिषी बनकर आते हैं, फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, वैद्यनी बनकर आते हैं। हाँ एक बार राधा रानी और कृष्ण को मिलने की बहुत इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, और राधा रानी को बुखार आ जाता है। मतलब बुखार कैसा है, वो विरह का बुखार है, ज्वर आ जाता है। उसके पहले उसकी कहानी बताता हूँ, उनको सांप काटता है, एक्चुअली वो सांप काटता है ऐसे बवाल उठाते हैं, लेकिन एक्चुअली विरह का जो सांप है वो काट कर उनको विरह की अग्नि होती है, तो बेहोश होकर पड़ी है बुखार से, तो वैद्य बन कर आते हैं और कहते हैं कि ये सांप जो है ना ये बहुत भयंकर सांप है, इसने काट लिया है, अभी अच्छा हुआ आपने मुझे अभी बताया, कुछ देर बाद बताते तो राधा रानी जीवित नहीं रहती, इतना तेजी से बढ़ रहा है ये, पैर से हृदय तक बढ़ रहा है, हृदय को बढ़ेगा हृदय तक पहुंचेगा तो खत्म हो जाएगी वो, तो एकदम डर जाती है, अरे कुछ करो भाई मेरी बहू है, जटुला कुटुला बोल रहे हैं कुछ करो, बोले अभी एकांत लगेगा आप सब लोग बाहर चले जाओ, दरवाजा बंद करते हैं, अंदर खुश सांप की आवाज करती है, वो कह रहे हैं कि मुझे सांप से बात करने की कला आती है, मैं सांप से बात कर सकता हूँ, कि क्यों काटा तुमने इसको, तो मैं वो संवाद करने के लिए एकांत चाहिए, मैं अपना एकाग्रता से मंत्र बोलूंगा, सांप से बात करूंगा, सांप का मंतव्य जान लूंगा कि क्यों उसने काटा राधा रानी को, तो वो कहते हैं कि बंद करने के बाद सांप की वार्ता शुरू होती है, अरे बहुत बड़ा वैद्य है ये, क्या अजीब वैद्य है, क्या क्या कला आती है उसको, तो फिर सांप की आवाज में बोलने लगता है, एक बार वैद्य की आवाज में बोलते हैं, एक बार सांप की आवाज में बोलते हैं, वैद्य की आवाज में क्या बोलते हैं, अरे सांप तुमने वृषभानु नंदिनी अभिमन्यु की पत्नी राधा रानी को क्यों काटा, तो सांप की आवाज में बोलते क्या बोलते हैं कि अभिमन्यु जो इसका पति है वो इसको मथुरा भेजने का प्रयास कर रहा है, और ये अगर मथुरा जाएगी तो अभिमन्यु मर जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको काट कर यहीं रख लूं तो अभिमन्यु भी बच जाए, ऐसे ऐसे बातें हो रही, मतलब वो जो वैद्य है ना वो दोनों बातें कर रहे हैं, एक पात्री प्रयोग होता ना, सिंगल एक्ट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक ही रहता है एक्टर उसके अंदर, सभी रोल अकेला कर लेता है वो पर्दे के पीछे से, तो फिर वो बहुत रोते हैं, बहुत जटिला कुटिला, रहे अभिमन्यु पागल आदमी है तुम, तुझे पक्कल नहीं है, देखो सांप काटने से मरने वाले है वो, तो बीच में बाहर आता है, बोलता है अभी पहले वादा करो कि उसको मथुरा नहीं भेजेंगे यहाँ से, वो मथुरा क्यों भेज रहा है पता है आपको, क्योंकि बार बार ये छुप छुप के मिलते हैं राधा कृष्ण से, जंगल में मिलते हैं, कभी वन में मिलते हैं, कभी देवी के मंदिर में मिलते हैं, अलग अलग बहाने से मिलते हैं, तो अभिमन्यु जो उनका पति है वो परेशान हो जाता है, बोला अभी मैं इसको मथुरा ले जाऊंगा तो फिर ये सब चक्कर रोज का बंद हो जाएगा, तो माता बोलती है उसको वादा कर, अभी पहले वादा कर मेरे सामने कि तुम उसको मथुरा नहीं ले जाएगा, तो बोले मैं वादा करता हूँ मथुरा लेकर जाऊंगा, तो बोला अभी मैं सांप से बात करूंगा, अंदर जाता है, फिर अभी मैं मंत्र बोलूंगा और पूरा सांप का जो है मंत्र विष जो है उतर जाएगा, तो उतर जाता है सांप पूरा, तो राधा रानी जब ऐसे आंखें खोलती है कृष्ण भगवान देखती है एकदम खुश हो जाती है, बोले देखो आइए आपका मरीज देखिए सब बढ़िया हो गया है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एक बार वो जाते हैं वहां पर अकेले में मिलते हैं, अंदर जाके सखी का भेष बनाकर ससुराल में पहुंचते हैं, और वहां पर अंदर अंदर कमरे में सब सखियाओं ने प्लानिंग किया अच्छी तरह से, सब सखिया गार्ड है बाहर, और ये अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, वो बात बात में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, उतने में जटिला आती है, चलो चलो अभी क्या हो रहा है इधर, तो ये भाग जाते हैं खिड़की से उतर के, लेकिन जब भागते हैं तो अपनी मुरली जो है वहां भूल जाते, और भागने के बाद उनको पता चलता है मुरली कहाँ गई, अरे उधर ही रह गई, तो जटिला जो है भाग के अंदर आती है, मैं जानती हूँ कि कृष्ण से मिल रही थी, बोले किधर कृष्ण थे, कोई ना जो सखियां खड़ी है सब लोग को है नहीं, तो ये कैसे यहाँ पर है, ये मुरली कैसे यहाँ पर आ गई, वो तो मुरली बजाना तो एक ही है, बोला नहीं भैया आज ब्रज में मुरली की बरसात हुई है, हमारे घर पे भी गिर गई, देखो उतनी भी क्या देखती है, आंगन में मुरली, गौशाला में मुरली, बाहर मुरली, सब जगह मुरली ही मुरली, सखिया ये बात सच है क्या, मुरली की वर्षा हुई, हाँ हमारे घर में भी सब लोग भाग भाग के आ रहे हैं, अरे मुरली की वर्षा हो रही है, मुरली की वर्षा हो रही है, सब लोग मुरलियां लेकर आ रहे हैं, देखो हमारे घर में भी गिर रही है, हाँ ठीक है भी, कोई बात नहीं ऐसे सुंदर सुंदर लीला यहाँ पर होती है, हाँ इसलिए भगवान ने यहाँ पर राक्षसों को आने को पूरा मना कर दिया है, कोई राक्षस यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता, एक बार ऐसे ही, तो मैंने क्या एक बात कहाँ से शुरू हुई थी कि यहाँ पर अनंत बार ठाकुर जी अलग अलग रूप बदलकर भानु महल में आते हैं, अलग अलग बहाना बना के आते हैं, हाँ एक बार क्या हुआ कि ये सब लोग ना गोपियाँ बहुत परेशान हो गई कृष्ण भगवान से, और वो आपको धूप लग रही बहुत, क्या कष्ट हो रहा है क्या, नहीं ना बताना मुझे, मैं बता समाप्त करूँगा उधर, तो रोज का वो क्या है ना इतने माहिर चोर हैं ये, और भाषण भी इतना मधुर करते हैं, जब मिलने आते हैं तो इतना मधुर मधुर बोलते हैं ना, तो मधुर मधुर भाषा में पूरा मोहित कर देते हैं, फिर कौन सा गहना कहाँ से निकाल देते हैं समझता नहीं किसी को। माता और राधा रानी को यहाँ एक सुंदर गहना पहना के भेजती है, यहाँ मणि लगाती है, कान में अलग अलग रोज अलग अलग सुंदर सुंदर बना के लाती है, और जब इनको मिलने के बाद निकलते हैं तो अरे ये कुंडल गायब, यहाँ का मणि गायब, यहाँ गले का हार गायब, सब गायब। पता है उनको कि यही व्यक्ति चोरी करता है। कभी कभी उनको पकड़ते हैं, तुम्हारे जेब को देखेंगे, अभी जेब में मिल जाता है। मुझे पता नहीं, जब मैं बात करता हूँ आपसे तो इतना मैं खुद मोहित हो जाता हूँ, मेरा हाथ कहाँ जाता है, क्या उठाता है और कहाँ रखता है, मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छी बात है, बहुत होशियार बनते हो। फिर घर में आना, माखन चोरी करना, फिर ये चुराना वो चुराना, हर चीज चोरी करना, और घर में माता हमको डांटती रहती है, कल सुबह पहना के भेजा था, शाम को आधा छोड़ के आती हो, कैसी कन्या हो तुम। तो एक बार सोचते हैं कि अभी सब भी मिलकर, मतलब एक का नहीं, राधा रानी का, ललिता का, विशाखा सबका चोरी करते हैं हर रोज, तो सब मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अभी इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो सब लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि अभी हम सब लोग मिलेंगे उनको, एक साथ मिलेंगे, और उनको जो जो पसंद है ना वो सब बना के लेके आएंगे, एक एक व्यंजन ऐसे प्रेम से बना के लेके आएंगे सब लोग मिलके, हाँ अलग अनेक अलग अलग व्यंजन बना के लेके आएंगे, और कोई बहस बहस नहीं करेंगे। जैसे कि माखन देने के लिए बहस करते हैं रोज, और मटके के लिए बहस करते हैं, कुछ बहस नहीं करेंगे। उसको जो चाहिए, माखन, मिश्री, दही, जो भी है, ऊपर से संदेश, मिठाइयाँ, जो भी उसको पसंद है सब ले जाते हैं। तो वो ऐसे वाद विवाद करने के मूड में सामने आएंगे ना, तो वाद विवाद करेंगे नहीं, तुरंत दे देंगे उनको। अरे वाह, जैसे ही वो सखियाँ आती है तो ऐसे वो डंडा लगे खड़े होते हैं, ये डंडा कहाँ है मेरा, लाया कि नहीं आया, है ना, बहुत काम की चीज है ये। तो खड़े हो जाते हैं ऐसे इस भाव में कि अभी हम लोग विरोध करेंगे, फिर हम डंडा उठाएंगे, फिर मारेंगे उसको, फिर वो करेंगे। बोलते अरे कन्हैया बैठ जाओ, डंडा क्यों लेके खड़े हो, बैठ जाओ। सबको बिठाते, मधुमंगल को, सब सखाओं को बैठाते हैं, और पूरा खिला देते बिठा के। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा दिन है, कितना भाग्य की बात है, सब कुछ मिल रहा है। इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि वो फिर पहले बैठ के खाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, उधर ही सो जाते हैं। जैसे ही सब लोग देखते हैं कि बहुत गहरी नींद में सो गया, इतना मिठाई खाने के बाद नींद आएगी ना, इतना शुगर बढ़ेगा तो नींद तो आती है ना, हाइपोग्लाइसीमिया में दिमाग में हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या बोलते हैं उसको, वो हाइपोग्लाइसीमिया होने के बाद में दिमाग में बहुत ग्लानी आ जाती है। इसलिए जब हम लोग कथा करते हैं ना, तो सारी कथाएं प्रसाद के पहले ही बोल लेते हैं, क्योंकि प्रसाद के बाद में जो है ना, खाली देखते हैं आंखों की पलके कितने लेवल पे हैं, नीचे नीचे जैसे जाते रहती हैं, ऐसे अंदर के गोल भी गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए हम लोग कथा वाले बहुत चतुर होते हैं, वो प्रसाद के पहले कथा बोल लेते हैं। तो वैसे ये सो जाते हैं पूरा, बहुत गहरी नींद में सोने के बाद में उनका सर से लेके पांव तक नखशिखांत, जितने भी गहने हैं सब उतार देते हैं पूरा, यहाँ से लेके मोर पंख उतारते हैं, सोने की जंजीर उतारते हैं, मणि उतारते हैं, यहाँ से मणि उतारते हैं, यहाँ से मणि, कर्ण कुंडल, गले की माला, वैजयंती कौस्तुभ, सारा जितना भी कमर काचनी, फिर पायल, सब उतार देते हैं, सब कुछ उतार देते हैं, केवल वस्त्र है शरीर, बस ऊपर का वस्त्र भी निकाल लेते हैं, पूरा माला वाला सब निकाल लेते हैं। बोले अभी बहुत अच्छा डंडा मिलेगा आज घर से, क्योंकि माता ने जितना पहनाया है सब हमने ले लिया है। तो फिर घर चले जाते सब लोग अपने अपने घर खुशी से, आज हमने अच्छा सबक सिखाया। बहुत घंटे के बाद में हमारे महाराज उठते हैं, देखते अरे सखे भी सब गायब हो गए हैं, और सब अहंकार अलंकार सब सब गायब हो गया है। तो अंतर्ध्यानी है ना, वो सब जानते हैं कि कौन सब क्या करता है, सब ठीक है, बहुत होशियार बनती है गोपियां, मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं उनको सिखाऊंगा, आज सबक सिखाऊंगा अच्छी तरह से। घर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, माता बहुत डांटती हैं, बोले मैया अभी क्या बताऊं आपको, इतनी दुख की बात है, इतनी दुख की बात है कि मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आप चिंता का मत करना मैया, मैं आपको सारे गहने जो अपने पहनाए थे वो ला के दूंगा। ऐसे करके मैया को मीठी मीठी बातों से मनाते हैं, सो जाते हैं। यहाँ पर गोपियाँ बहुत खुश हैं, अरे अभी कितना डांट पड़ी होगी घर पे, कितना सबक सिखाया हमने अच्छी तरह से। कोई बात नहीं, अचानक वहाँ से एक सखी आती है, बरसाने में आती है, बड़ा सुंदर अलंकार किया है, बहुत सुंदर, बहुत लंबा घूंघट लगाया उसने। तो लंबा घूंघट का लगाने का क्या राज है यहाँ पर, कि लंबा घूंघट तब लगाते जब नई नहीं होता दुल्हन, तो सबसे लंबा घूंघट होता है। जब वो थोड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती ना तो फिर घूंघट कम कम होते जाता है, और एक बालक हो गया तो घूंघट पूरा हट जाता है। तो ये बहुत लंबे घूंघट वाली थी, तो कह रहे अरे कहाँ से आई हो? तो मैंने कहा कि मैं उपनंद के यहाँ पर नई नई ब्याही हूँ, मतलब उपनंद के घर में जो बालक हैं उसकी बहू हूँ, और बड़ी हमने गौरव सुना है श्री जी का, उसका दर्शन करने आए। तो उसका उसकी लज्जा, उसका संकोच, उसके बात करने का ढंग, उसका प्रेम, सब गोपियाँ आकर्षित हो जाती। फिर वो आगे लेके चलती होगी, चलो हम चल लेके चलते हैं। तो उतने में कृष्णा ऐसा करके बेहोश हो जाती है, श्याम करके बेहोश हो जाती है। अरे सब सखी एकदम चौंकित हो जाती है, क्या हो रहा है? तो उसको हवा देती है, जल देती है उसके ऊपर, तो होश में आती है। फिर कुछ देर चल के ये सब देखिए और सखियाँ इकट्ठा हो जाती है। अरे क्या सखी है, क्या प्रेम है, कोई दर्शन नहीं किया इसका, कितनी सुंदर है, कितनी सलज्ज है, कितनी संकोच में है, देखो कितनी संस्कार प्राप्त किए इसने। तो और इकट्ठा हो जाती है, फिर आगे जाती है, फिर ये कन्हैया आकर के फिर गिर जाती है। अरे इतना प्रेम तो हमने कभी अनुभव नहीं किया है, नाम लेते ही गिर बेहोश होना, इतना भाव विभोर था। एकदम सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, एकदम दिस इज लाइक बेस्ट कॉपी ऑफ ऑल कॉपी, क्योंकि उनके अंदर ईर्षा नहीं ना कोई, वो कभी किसी का प्रेम देखकर ईर्षा नहीं करते कि हमसे ज्यादा प्रेम कृष्ण से करेंगे तो कृष्ण उनको ज्यादा फेवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब इम्प्रेस हो जाती है, जितनी भी गोपियां, सबसे वो खबर फैलती है कैसी गोपी आई है आज नंद बरसाने बरसाने में, कि क्या कहें उसका, आके देख लो। जितनी सखियां बढ़ती है वैसे अलग अलग मधुसूदन, मनोहर, नंदलाल, ऐसे अलग अलग नाम पुकार के बेहोश होते 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 आखिर में जब श्री जी के दरवाजे में पहुंचती है तो एकदम जोरदार गिर जाती है। ललिता विशाखा सब इकट्ठा हो गए, सब हवा दे रहे हैं, कोई कुछ मंत्र बोल रहे हैं, कुछ पानी दे रहे हैं, कुछ गाय का पूछ लगा रहे हैं, सब कुछ उपाय कर रहे हैं, ये होश में नहीं आ रही है। अभी तो बहुत समस्या हो गई, यहाँ तक तो मैनेज कर लिया हम लोग ने, यहाँ तक ऐसा तो लाया उसको, क्या कर रहे हैं अभी? बोले श्री जी को बुलाएंगे। श्री जी आती है, श्री जी आती है, हवा देती है, वो तुरंत जग जाती है। श्री जी को देखती है, सखी बनी हुई कन्हैया, फिर गिर जाती है। और इस बार जब गिरती है तो श्री जी भी उसको उठा नहीं पाती, तभी तो बहुत मतलब इतना प्रेम हो गया उनको उस गोपी से कि इतनी प्रेम करने वाली गोपी हमारी सखी होनी चाहिए हो। और वो मर रही है अभी, इतनी व्याकुल होकर बेहोश होकर भी पता नहीं होश में नहीं आएगी तो मर जाएगी, ये वैसे ही मर जाएगी। तो अभी बहुत समस्या, अभी वो सब गिरी हुई है, कुछ पंखा दे रहे हैं, कुछ क्या क्या कर रहे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो फिर वो सब लोग ललिता विशाखा जो है जाके राधा रानी से मीटिंग करते हैं कि अभी कुछ करना चाहिए, अभी हमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना चाहिए, ये सखी मर जाएगी। तो ललिता जी हमारे बहुत कुशल है, बहुत बुद्धिमान है, वो सोचते हैं अरे आइडिया, हमारे पास सब कृष्ण के वस्त्र हैं, सब वस्त्र हैं, सब अलंकार है, मोर पंख है, मुरली है, सब कुछ है। राधा रानी तुम आज के लिए कृष्ण बन जाओ, थोड़ा तो विरह कम हो जाएगा उसका, देख के तो थोड़ा शांत हो जाएगी वो, कम से कम उसका बेहोशी तो खत्म हो जाएगी। तो तुरंत उनका प्लानिंग होता है कि तुम यहाँ बैठो, हवा करो, तुम अंदर जाओ, उनको श्रृंगार करो, श्रृंगार ले आओ, राधा रानी का पूरा श्रृंगार करो, उनके बाल सब पेटे में बांध दो और उसको मुरली पकड़ा दो हाथ में और सब कुछ करके श्रृंगार करके उसको लेके आते हैं। पूरा नखशिकांत जो श्रृंगार है कृष्ण का वो धारण करके राधा रानी को लेके आते हैं। बोलते अभी खड़ी हो जा, तो राधा रानी खड़ी हो जाती है त्रिभंग अवस्था में, और वो कहते हैं कान में, देखो देखो श्याम आए हैं, त्रिभंग अवस्था में खड़े हैं, सब अलंकार पहन के बड़े सुंदर लग रहे हैं, देखो देखो उठो उठो सखी उठो। तो ऐसे ठाड़ करके उठ जाती है, देखो पकड़ लिया ना मैंने तुमको, रंगे हाथ पकड़ लिया, बहुत होशियार बनती हो। हाँ एक झटके में सब बेहोश खत्म हो जाती है, सब घूंघट मुंघट उड़ा के श्याम बन जाते हैं। आप लोगों ने मुझे खिला पिला कर बेहोश कर दिया, खाना खिला के सब लंगर लेके आए, चलो उतारो सब, सब उतारो। एकदम सबके बीच में इतना क्या आइडिया है उनकी, हाँ इतने सखियां को घेर रखा है फिर भी वो एकदम रुबाब से बोल रहे सब उतारो, रंगे हाथ सब उतारते हैं, सब धारण करते हैं और ठाट से गांव चले जाते हैं। देखो मैया मैंने कहा था ना ले आऊंगा, लिखो ले सब लेके आया। तो ऐसे सब लीला यहाँ पर करते हैं। तो ये सब लीला जो है भानु महल की है। अभी दानगढ़ की लीला ऐसी है कि दानगढ़ में यहाँ पर जो पर्वत है ना, चार पर्वत जिस जगह मिलते हैं तो एक बहुत छोटा रास्ता तैयार होता है, सांकरी कोर कहते हैं उसको, सांकरी यानी छोटा, जैसे दो फरवरी ऐसे मिलते हैं ना, तो कितना जगह बनेगा, एक ही आदमी जाएगा एक टाइम पे, यहाँ से या वहां से। तो रोज वहां से बरसाने से सखी आती है और नंदगांव से कृष्ण आते हैं डंडा लेकर, सबको रोकते हैं, दही दो। क्यों दो? नहीं, हमारे एरिया से आप गुजर रहे हैं और यहाँ से गुजर के अपना माल लेके जाते हो, मथुरा बेचते हो तो पैसा कमाते हो, हमें कुछ देते नहीं, हमारे एरिया से गुजरते हो, टैक्स देना पड़ेगा आपको। बोले तुम कैसे राजा बन गए इसके आगे? मैं नंदराय का बेटा हूँ, इसलिए मेरा अधिकार है, मुझे टैक्स दिए बिना आप यहाँ से जा सकते नहीं है। वो तो यहाँ नंदराय का राज्य नहीं है, यहाँ श्री जी का राज्य है, ब्रिष्मानु महाराज यहाँ पर महाराज है, इसलिए हम अपने इलाके से जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है यहाँ पर आने की, आप कोई नहीं, यहाँ पर चले जाओ, आप परदेसी हो। बोले मुझे कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, टैक्स दे बिना नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज़्यादा बहस होती है, फिर बहुत लंबी कथा है, बहुत सुंदर कथा है, लेकिन कृष्ण भगवान बात बात में जो है राधा रानी के मटके को फोड़ देते हैं। राधा रानी बड़ी व्याकुल हो जाती है, इतना कीमती मक्खन जो है वो ऐसे सर पे गिरता है, जमीन पर पत्थर पे गिर जाता है, फूट जाता है, सब वेस्ट हो गया, ना तुम खा पाए ना किसी को खाने दिया। तो ललिता जी बहुत गुस्से से सामने आते, राधा रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है उनको देख, अरे मतलब डर जाती है कि अरे इसने तो मटका फोड़ ही दिया मेरा, पूरा एकदम सहमा जाती है पूरा, शी गेट्स डिप्रेस्ड, तो एकदम कुछ बोल नहीं पाती है। तो ललिता जी तेज है, वो सामने आती है और उंगलियां लड़ा के बहुत डांटती है कृष्ण भगवान को। तो ये मटकी लीला है, हाँ ये होली के आसपास होती है, उसको बूढ़ी लीला कहते हैं या तो बार्धकी लीला कहते हैं, राधाष्टमी बाद में होती है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि बूढ़ी मतलब बूढ़े लोगों की लीला नहीं है, जो भक्ति में वृद्ध हो गए हैं, हाँ रसिक वृद्ध, रस वृद्ध कहते हैं उनको, जो बहुत ऊंचे भक्त हैं, भक्ति में बहुत पुराने हो चुके हैं, उनके आस्वादन के लिए लीला है। चलो यहाँ पर लोग सांकरी कोर में करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे ही रोज का झगड़ा है, रोज आना, रोज रोकना, रोज मटकियां तोड़ना, रोज सबको परेशान करना। तो सखियां कहते हैं कि अभी हम लोग कुछ आइडिया करते हैं इसका। तो एक दिन आते हैं मटकी लेकर और बिना कुछ बोले तुरंत दे देते हैं उनको, एक ही बोलते शर्त, देखो ऐसा है कि आज बहस नहीं करेंगे, आज केवल प्रेम से खिलाएंगे आपको, लेकिन एक ही शर्त है कि आप ना हाथ में मत खाना। जब हाथ में खाते हैं ना ऐसे लेकर, तो बहुत सारा नीचे गिर जाता है, फिर इतना कीमती हमारा मक्खन, इतना मेहनत से बनाया, आप हमारी इच्छा है कि आप सब आपके पेट में जाए, इसलिए आप क्या करो दोना लेके आओ, दोना होता ना जो सब्जी खाते हैं उसके अंदर। तो उस जमाने में अभी भी है लेकिन बहुत दुर्लभ हो गया, लेकिन हमने भी दर्शन किया है, लेकिन उस जमाने में तो पेड़ में दोने लगते थे, रेडीमेड कप्स, पत्ते ऐसे गोल घूमकर वैसे बनते थे, तोड़ दिया तो रेडीमेड कप होता था, जैसे कि होता ना वो आइसक्रीम का ग्लास का होता ना बर्तन, कैसे तरह बीच में बहुत नैरो होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे हम पकड़ के उसमें आइसक्रीम खाते हैं, वैसे ही कुछ दोना बनता था, ऊपर से कप, नीचे से पकड़ने के लिए डंडी, बढ़िया से दही खा रहे हैं उसके अंदर। तो बोले आज तो कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मेहनत नहीं, फ्री में मिल रहा है, चलो भागो सब लोग। तो सब लोग गए धोनी कुंड के पास, और धोनी कुंड के पास दो बातें हैं, भगवान राधा रानी के पिताजी जो है ना वो अपनी गाय को वहाँ पर धोते हैं, मतलब दोहते हैं, मतलब मिल्क मिल्किंग दूध निकालते हैं, और वहाँ पर बहुत दोने वाले कदम के वृक्ष हुआ करते थे, सब जगह होते हैं, लेकिन वहाँ गए वो सब पेड़ पे चढ़ गए कि आज फ्री में मिल रहा है कोई तकलीफ के बिना। तो सब लोगों ने इतना मग्न होकर, वो तो अभी दही मिलेगा इस भावना से सब कप तोड़ रहे हैं, तो सबकी चोटियाँ जो है ना लंबी से लटक रही हैं। तो सब सखियाँ जाती है चुपचाप सबकी चोटियों को लेकर, सब बांध देती है झाड़ को सब जगह में। तो जब वे उतरने की कोशिश करते तो वे अटक गए पूरे ऐसे, हिलना हिलना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि सब चोटियाँ अटकी हुई है। सब पुकारते हैं कृष्णा बलराम बचाओ, चोटियाँ बांध दी है, हम लोग अटक गए हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, जब कृष्ण भगवान को पुकारते हैं तुरंत आते हैं, उनको संकट से बचाते हैं, बोल रहे कृष्णा अरिष्टासुर आया है, कृष्णा धेनुकासुर आया है, बचाओ। तो कृष्ण बलराम भाग के आके उनकी रक्षा करते। तो ये लोग पुकार रहे हैं कृष्ण बलराम बचाओ, पाही माम रक्षा माम। तो वहां से आवाज आ रही है पाही माम रक्षा माम, किसकी आवाज है वो? कृष्ण बलराम की आवाज है। अरे स्वयं कृष्ण बलराम पुकार रहे, बोले क्या अजीब बात है आज, क्या करूं मेरी भी चोटी बंदी हुई है। बलराम जी को, दाऊ जी को बोलो, दाऊ जी को, उसकी भी चोटी बंदी हुई है, क्या करेंगे, सबकी चोटियां बंदी हुई है। सब गोपियां ताली पीट पीट खस रही है, मक्खन खाना चाहते हो, आओ अभी मक्खन खाओ। तो बहुत रोते हैं सब ग्वाल बाल। तो महाराज जी ने ये कथा बताई हमें साखरी कोर में, और मुझे पूछा बताओ यहाँ पर कृष्ण बलराम क्यों खुद पुकार रहे हैं। तो मुझे कुछ उत्तर मालूम नहीं था इसका, तो मैं अभी साखरी कोर पार करो फिर बताता हूँ। सब भक्त लोग साकरे गोर को पार करके उस पार गए, सब लोग बैठ गए। तो महाराज ने बताया कि ब्रज में सब जगह पर कृष्ण बलराम रक्षक हैं सबके, लेकिन जब बरसाने के लिमिट बॉर्डर के अंदर आते हैं वो भी असहाय हो जाते हैं, राधा रानी के सहारे में असहाय हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ग्वाल बाल भी पुकार रहे हैं और जिनको पुकार रहे हैं वो भी पुकार रहे हैं, बचाओ। यहाँ राधा रानी मालिक है, हाँ यहाँ पर कृष्ण बलराम स्वामी नहीं है, यहाँ पर राधा रानी स्वामी स्वामिनी है। तो फिर वो बहुत क्रीड़ा थे, कृष्ण भी रोते हैं, बलराम जी रोते हैं, सब ग्वाल बाल रोते हैं। फिर वो कहते हैं बचाओ, अभी कुछ भी बोलो आप, जो शर्त करेंगे मंजूर है हमको, आज आप बचाओ अभी यहाँ से, छुड़ा दो हमको। तो कहेंगे एक शर्त पे आपको छोड़ेंगे सबको, कल जो है तुम्हारा जो नेता है ना वो कृष्णा श्याम सुंदर, उसको राधा रानी बन के आना पड़ेगा, राधा रानी का श्रृंगार करके आएगा और सब सखा जो है वो सब सखियाँ बनकर आएंगी, अपने घर से अपने हाथ के बनाए हुआ माखन दही सब मटका में डालकर सर पे धारण करके सखी बनकर आएंगे, और हमारे राधा रानी जो है वो कृष्ण बनकर आएंगी, श्याम सुंदर बनकर आएंगे झंडा लेकर हाथ में, और आपको रोकेंगे हम और आपका मटका तोड़ेंगे और सब खाएंगे, मंजूर है? ले हाँ ठीक है। तो सब लोग को छोड़ दिया, छुट्टियों को गुजार दिया, अगले दिन में सब सखियाँ बनकर आए, कृष्ण भगवान राधा रानी बनकर आए टुमक टुमक के मटका लेके, और यहाँ से राधा रानी आई डंडा लेकर सखा बन के, और बहुत बहस किया और तोड़ दिया मटका उनका। और फिर वो दर्शन जो है वो दान मंदिर में है, दानगढ़ में राधा कृष्ण का मंदिर है, उसका नाम राधा दान बिहारी जी है, लेकिन दान बिहारी जी जो है वो राधा रानी है और राधा जो है वो कृष्ण है। क्योंकि आप देखेंगे और से देखेंगे आपको पता चलेगा कि कृष्ण भगवान जो बने हैं दान बिहारी जी, वो मंगलसूत्र पहने हुए हैं, वो राधा रानी है और राधा रानी जो है वो कृष्ण है। आप दर्शन कीजिए उसका। तभी हम यहाँ पर कथा समाप्त करते हैं, धूप भी बढ़ रही है, तभी सबको प्रसाद देंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम अगले स्थान पे जाएंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।